नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू, इसमें मकान सूचीकरण किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में किसी भी थर्मल पावर इकाई को बंद करने की खबर को निराधार बताया, कहा कोई भी इकाई बंद नहीं होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में आंधी, बारिश और ओलों का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी। इस चरण में मकान सूचीकरण होगा और आवास से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार डिजिटल रूप से होने वाली इस जनगणना में स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। राजस्थान में स्वगणना अवधि 1 मई से 15 मई तक है। स्वगणना एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा है, जिसके माध्यम से घर घर सर्वेक्षण से पहले 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। इसमें नागरिक पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डिजिटल जनगणना के फायदों के बारे में बताया।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है। डिजिटल में सबसे पहला फायदा तो यह है कि आंकड़े ज्यादा शुद्ध तरीके से संग्रहित होंगे। जो फिजिकल आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको डिजिटाइज करने में त्रुटियों की संभावना रहती है। जनगणना के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन शीघ्रता से संपन्न हो सकेगा।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की थर्मल पावर इकाइयों को बंद करने की खबरें पूरी तरह गलत हैं और कोई भी इकाई बंद नहीं होगी। कोटा में आयोजित जनसुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री नागर ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त बिजली लेने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बेमौसम बारिश से हुए फसल खराबी के लिए संभाग में सर्वे के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को जल्द मुआवजा मिल सके।
और बिजली व्यवस्था के लिए भी हमारा विभाग लगातार प्रयास रहता है कि आने वाली गर्मी को देखते हुए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उसके अनुसार जहां जरूरत है उसके अनुसार पावर को परचेज करके, चाहे वो हमें शॉर्ट टर्म परचेज करनी पड़े, चाहे उसके लिए हमें मतलब एनआईटी से करनी पड़े, या फिर केंद्र के माध्यम से भी कुछ हमें सहयोग मिल रहा है और उसमें भी अतिरिक्त बिजली हमें मिले, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास रहते हैं।
राज्य के 24 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए अब दिन में बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, झालावाड़, जालौर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसानों को रात में सिंचाई करने से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल 22 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब जयपुर डिस्कॉम के दौसा और करौली जिले भी इसमें जुड़ गए हैं। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जिले के किसानों में खुशी की लहर है।
डिस्कॉम ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करते हुए 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं और 15 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई है। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत जिले में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया गया है। इससे जिले के 35,000 से अधिक किसान अब सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अब किसानों को रात में ठंड और अंधेरे में सिंचाई के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा भी बढ़ी है और मेहनत भी कम हुई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
राज्य सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 25 जिला कलेक्टरों को बदला गया है। मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव रहे संदेश नायक अब जयपुर के कलेक्टर होंगे। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। वे डीआईपीआर के भी सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुकुल शर्मा मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव होंगे। अरविंद कुमार पोर्सवाल को हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ रश्मि शर्मा को समग्र शिक्षा अभियान का निदेशक बनाया गया है। उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव होंगे। नमित मेहता को आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। केन्द्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति की है। बिहार काडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मौजूदा सचिव संजय जाजू को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। इसे प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षकों की ओर से विद्यार्थियों का तिलक और फूलमालाओं से अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही पहले दिन ही पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से भी संपर्क कर रहे हैं। वहीं रैली के माध्यम से भी स्कूल चलो का संदेश दिया जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से कई बदलाव हो रहे हैं। छह दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 आज से लागू होगा। पुराने प्रावधानों को हटाकर इसे करदाताओं के लिए पारदर्शी और सरल बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आज से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। साथ ही अन्य बदलावों पर समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी डॉ सालेहा गाजी की एक रिपोर्ट।
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में कई अहम बदलाव होंगे। रेलवे यात्रियों के लिए राहत है कि अब काउंटर टिकट कहीं से भी रद्द हो सकेगा और रिजर्वेशन चार्ट पहले ही तैयार होगा। हाईवे पर टोल बढ़ोतरी अब जेब पर असर डालेगी। प्रदेश के 170 से अधिक टोल प्लाजाओं पर दरों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कारों के टोल में कोई वृद्धि नहीं की गई है। स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों और अदालतों के समय में बदलाव से अभिभावकों विद्यार्थियों और बाधकारियों की दिनचर्या प्रभावित होगी। आज से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय भी बदल गया है। ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। वहीं पहली बार राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत आज 1 अप्रैल से की गई है।
राज्य में बीते 24 घंटों में कई शहरों में आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर चला। कोटा श्रीगंगानगर नागौर डीडवाना कुचामन में देर रात हुई बरसात के साथ ओले भी गिरे। जयपुर हनुमानगढ़ चूरू भरतपुर सहित अन्य स्थानों पर गरज और आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। प्रदेश में इस समय गेहूं सरसों और चने की फसलें कटाई के करीब हैं और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। नागौर के धनारी कला डेहरू डेगाना में वहीं डीडवाना कुचामन के मकराना और गच्छेपुरा क्षेत्रों खेतों में ओलों की चादर बिछ गई। हनुमानगढ़ के नोहर और भाद्रा क्षेत्रों में भी तेज बारिश के साथ ओलों ने खेतों में तैयार खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। धौलपुर और भरतपुर में कल शाम आंधी चली। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बारिश भी हुई और तापमान में गिरावट आई है। हालांकि किसानों को नुकसान होने की आशंका है।
भरतपुर में कल रात्रि को आंधी चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। काफी देर तक चली आंधी से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए जिससे बिजली प्रभावित हो गई। बाद में आसमान में घनघोर घटाएं छा गईं और कभी तेज तो कभी हल्की बरसात शुरू हो गई। बरसात के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बरसात और आंधी से किसानों के खेतों में रबी की कटी हुई फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
देश भर में प्राकृतिक गैस पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च महीने के दौरान घरेलू वाणिज्यिक छात्रावास मैस और कैंटीन सहित 31 लाख से अधिक कनेक्शनों को गैस युक्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू, इसमें मकान सूचीकरण किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में किसी भी थर्मल पावर इकाई को बंद करने की खबर को निराधार बताया। कहा, कोई भी इकाई बंद नहीं होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।